بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد محترم دوستو بزرگو بھائیو رمضان المبارک کے بعد یہ پہلی مجلس ہے بہت سے حضرات کو تعجب بھی ہوا ہوگا کہ رمضان المبارک میں مجلس بند کر دی گئی دوست احباب جو ہیں محروم رہے استفادہ سے تو اصل بات یہ ہے کہ مجھے ابھی ایک حدیث شریف یاد آ گئی وہ پہلے بھی یاد تھی مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے بدا الاسلام غریبہ وسیعود کما بدا اور ایک روایت میں ہے وسیعود غریبہ فطوبا للغربہ او کما قال علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اسلام شروع ہوا غربت سے غربت کا معنی فقیری نہیں یاد رہے ہیں یہاں حدیث شریف میں غربت سے مراد فقیری نہیں ہے اجنبیت بدا الاسلام غریب یعنی اسلام پر چلنے والوں کو اجنبیت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا وہ عجیب عجیب باتیں کہتے تھے خیر تو جب اسلام شروع ہوا تو بالکل اجنبی تھا اور اسلام پر چلنا بہت دشوار تھا حدیث شریف میں وسیعود کما بدا ان قریب وہ اسی طرح ہو جائے گا جس طرح شروع ہوا ہے نہ آہستہ آہستہ اسلام پر چلنا مشکل ہو جائے گا فطوبا للغربا یہاں بھی غربا سے مراد فقیر نہیں یاد رہے خوشخبری ہیں ان غربا کے لیے کہ جو اسلام پر چلیں گے تو کہنے کا منشا یہ ہے کہ آہستہ آہستہ حالات اس طرح آئیں گے تو ہمارے سامنے چونکہ رمضان المبارک کا مہینہ تھا پچھلے رمضان میں جماعت کے ساتھ تراوی نہیں ہوئی تھی سب کو معلوم ہے مسجد میں ہوئی تھی لیکن دو دو تین تین آدمی تھے اور ایک بہت بڑی امت قرآن شریف سننے سے محروم رہی تھی ذہن میں یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ یہ رمضان المبارک کا مہینہ جو ہے قرآن شریف کی تلاوت کلام پاک کا نمازوں میں پڑھنا تراویح میں یہ جاری رہے اور عافیت کے ساتھ مہینہ اللہ پاک پورا کرائیں یہ منشا تھا ہمارا الحمدللہ یہ پورا ہوا اس لیے کہ ہماری مجلس جو ہیں اتنی قیمتی نہیں ہیں ہماری مجلس اگر بند رہے گی تو اتنا نقصان نہیں ہوگا لیکن اللہ کا کلام اس کی تلاوت نمازوں میں پڑھنا مصلیوں کا مسجد میں آنا جانا اگر یہ جاری رہا تو یہ بہت بڑا نفع ہے تو الحمدللہ مقصد پورا ہوا اور مساجد میں کلام پاک تراویح میں پورا ہوا بہت سی مسجدوں میں الحمدللہ کسی جگہ 27 کو ہوا کسی جگہ 29 کو ہوا تو اس مقصد کی وجہ سے ہم نے مجلس بند رکھی تھی کہ ہماری مجلس اتنی اہم نہیں جو مقصد ہیں تصوف کا تصوف کا مقصد جیسے ابھی ہم بڑھ کے سنائیں گے اللہ کا ذکر اللہ کی یاد نمازیں دعائیں तिलावत, ये है मकसद। अगर दोस्तों में, मुसल्लियों में, मुसलमानों में ये जारी हैं तो मकसद तो हासिल है, हमें तो मकसद मकसद से ताल्लुक़ है, निजात से ताल्लुक़ नहीं। तो बहरहाल इसलिए हमने मसलहतन जो है बने रखा था। बहुत सों को ताज्जुब भी था कि भाई रमज़ान में तो माशाल्लाह प्रोग्राम होते हैं, तो हालात तो सबके सामने हैं जी, इन हालात में चलना है। तो अब इन हालात में किस तरह चलेंगे, इन हालात में हिकमत के साथ, बसीरत के साथ। एक मौली साहब ने बहुत अच्छी बात कही थी, मुझे याद रह गई थी, कि हमेशा जज्बात को अकल के ताबे रखने का और अकल को शरीयत के ताबे, ये तरतीब है। सुनिएगा, दीन भर चलने की तरतीब ये है कि हम जज्बात को अकल के ताबे रखेंगे, समझ के ताबे रखेंगे, समझेगा, और अकल को ताबे रखेंगे शरीयत के। अगर ये तरतीब रहेगी तो दीन के काम जारी रहेंगे, समझे। ये हमारे बुजुर्गों ने ये सिखाया, ये जितने दीन के काम हो रहे हैं इस वक्त माशाल्लाह, तीन काम जो हैं जिनसे उम्मत को नफ़ा हो रहा है बहुत बड़ा, समझेगा। एक इस वक्त तो जो है तीन काम ऐसे हैं जिनसे उम्मत को नफ़ा हो रहा है बहुत बड़ा, आप देखेंगे। एक तो ये मदारिस की लाइन से दीन का काम, माशाल्लाह वो सब जानते हैं। दूसरे नंबर पर जो है दावत और तबलीग के नाम से जो काम चला रहा है उससे भी, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। और तीसरे नंबर पर जो है ये जिक्र की मजलिसें हैं, एहतिकाफ़ हैं, जो भी हो, अब भी कुछ न कुछ बाकी हैं। तो ये तीन काम जिनकी वजह से माशाल्लाह ये कुछ दिन की रौनक बाकी है, लेकिन तीनों कामों को बसीरत के साथ चलाना है। चूँकि उलमा का मजमा होता है इसलिए मैं कहता हूँ, ये कुरान शरीफ की आयत है ना, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. कि मैं ये कह दूजिए कि मेरा रास्ता है, मैं अल्लाह की तरफ बुलाता हूँ लेकिन बसीरत के साथ, أنا मैं भी और जो मेरी इत्तेबा करे वो भी बुलाएंगे अल्लाह की तरफ लेकिन बसीरत के साथ, أنا ومن اتبعني. हमारे लिए तो दो ही चीज़ है, कुरान और हदीस, तरक तो फी को ममरन लन तदिल्लु मातम सक तुम बेहमा। मोहत्तम मालिक की रिवायत है कि दो चीज़ें छोड़ कर जाता हूँ, गुमराह नहीं होगे अगर तुमने इन दोनों को थामे रखा, किताब अल्लाह व सुन्नत रसूली औ कमा कल अलैहिस्सलाम। तो हमें भी दीन का काम करना है तो किताबुल्लाह सुन्नत को सामने रखेंगे। और हमारे अकाबिन ने इस पर अमल करके दिखाया, समझे। खैर, तो बसीरत के साथ जो है हमें करना है। कुरान शरीफ की दूसरी आयत भी है, उदउ इला सबील रब्बिक बिल हिकमति वल मौइज़तिल हसनति वजादिलहुम बिल्लती हिय आसन। तो दीन के काम तो करना है, इंशाल्लाह करेंगे मोतर, लेकिन जो है बसीरत के साथ, इलम के साथ, इखलास के साथ, बुजुर्गों के मशवरे से, तो इसमें बरकत होती है। बुजुर्गान दीन ने ऐसे माहौल में इंडिया जैसे मुल्क में कैसे दीन का काम किया, अभी मौका नहीं। मैं एक बात, एक दो बातें सुनाता कि उनकी बसीरत यानी उनकी दूर अंदेशी, अल्लाह अकबर, हुकूमत तो ख़त्म हो गई थी मुसलमानों की, वो तो मुग़ल के अखीरी बादशाह जो थे बहादुर शाह जफर पर ख़त्म हो गई थी, लेकिन उसके बाद जो है हमारे अकाबिर ने, हमारे असलाफ ने किस तरह दीन का काम किया 200 साल तक, एक दो साल तक नहीं, इंडिया में, हिंदुस्तान में। हम उनकी बातें सुने पढ़ें तो हैरत होती है। मौलाना सैयद अहमद अकबराबादी की किताब है मुसलमानों के उरूजो ज़वाल। एक तो मौलाना अली मियां साहब नदवी की हैं, मुसलमानों के उरूजो ज़वाल का असर दुनिया पर, वो और है किताब, मुसलमानों के उरूजो ज़वाल का असर दुनिया पर, तो वो किताब और हैं। और एक है मौलाना सैयद अहमद अकबराबादी की मुसलमानों का उरूजो ज़वाल। उन्होंने अजीब बात लिखी है, समझी बात, कि भाई इंडिया से मुसलमानों की हुकूमत ख़त्म हुई, तो हुकूमत तो गई लेकिन इस्लाम नहीं ख़त्म हुआ, हुकूमत तो गई लेकिन इस्लाम वहाँ से ख़त्म नहीं हुए। क्यों नहीं ख़त्म हुआ? स्पेन में हुकूमत गई, इस्लाम भी गया, 700 साल मुसलमानों की हुकूमत रही लेकिन मस्जिद सारे चर्च में चेंज हो गए, सबको मालूम है। सब कुर्तुबा में 2 रकात नमाज नहीं पढ़ सकते, आज भी नहीं पढ़ सकते, समझ बात, क्यों भाई? इंडिया में करोड़ों मुसलमान हैं ना, करोड़ों मस्जिद खोली हैं, मदारिस हैं, माशाल्लाह। पहले तो एक ही था वो, तो लेकिन अल्लाह पाक ने बाकी रखा, मुसलमानों को भी बाकी रखा, इस्लाम को भी बाकी रखा, समझे? तो ये क्यों सवाल किया, उन्होंने सवाल कायम किया, समझे? दोनों में फ़र्क क्यों, समझे? फिर जवाब भी लिखा है, समझे? ये हमारे बुज़ुर्गों की मेहनत है, ये जो हाँ वो खैर अल्लाह का फजल, असल तो अल्लाह का फजल है, लेकिन ये बुज़ुर्गों की मेहनत है मुख्तलिफ लाइन से, खुसूसन शाह वलीउल्लाह साहब का ख़ानदान, समझे, और छोटी छोटी खानकाहें थी, समझे, लिखा है उन्होंने, तो बुज़ुर्गों की मेहनत, इसकी वजह से वहाँ इस्लाम बाकी रहा और हम भी मुसलमान हैं भाई दोस्त। बाकी हुकूमत तो गई थी बहादुर शाह जफर पर, तारीख से भी हमें कुछ कुछ वाकिफ होना चाहिए, समझे? तो बहरहाल मैंने ये सोचा नहीं था, ये तो मालूम नहीं ये बातें कहाँ से जुबान पर आ गई, समझे? मैं ये कह रहा था कि भाई हमने रमज़ान में जो है मजलिस को क्यों बंद रखा, तो असल दीन का काम तो करना है हमें, मदारिस की लाइन से हो, दावत तबलीग की लाइन से हो, जिक्र की मजलिसें हैं, जो भी हो, लेकिन बसीरत के साथ सोच समझ करके, समझे, और बुज़ुर्गों के मशवरे से अल्लाह की तरफ मुतवज्जे हो करके करना है, समझे, ताकि ये काम चलते रहें, समझे, और लोगों को नफ़ा पहुंचता रहे। इखलास किसको कहते हैं? अल्लाह अकबर। मौलाना जो हैं सबको मालूम है, मौलाना बांधवी साहब, मौलाना सिद्दीक साहब बांधवी, मैंने पहले भी सुनाया होगा, सुनिएगा। तो मैं तो वो बहुत हैरान हो गए कि भाई इखलास किसको कहते हैं। इखलास इन्होंने समझा। मौलाना सिद्दीक बांधवी साहब तशरीफ लाए थे यहाँ, समझे, बड़े बुजुर्ग थे, सब जानते हैं। हजरत मुफ्ती साहब की खानकाह में कुरान शरीफ भी सुनाते थे ऐसी उम्र में, समझे, दो दो पारे, समझे। और हजरत के गालिबन शागिर्द हैं। तो मैनचेस्टर में मैं भी था, सुना, जब तशरीफ लाए थे मैं भी था वहाँ। तो बाज़े हजरत ने दरख्वास्त की, बैत की, समझे, बात मौलाना सिद्दीक साहब से। तो मौलाना सिद्दीक साहब ने फरमाया कि हजरत शेख रहमतुल्लाह अलैह के आदमी यहाँ मौजूद हैं, आप लोग उनकी तरफ रुजू फरमाएं। मैं तो आया हूँ, चला जाऊँगा, और बैत से मकसद तो इसलाह होती है। तो ये है इखलास। देखिए, वरना हम तो चाहते हैं कि बहुत से हमारे हाथ पर बैत हो जाए ताकि हमारी जमात बढ़े, समझे। तो मैंने सोचा अल्लाह अकबर, ये लोग मुखलिस थे, बैत नहीं की, समझे। लोगों ने दरख्वास्त भी की तो कहा गए हजरत शेख रहमतुल्लाह अलैह के आदमी यहाँ मौजूद हैं, उनसे बैत हो, इस्लाह मकसूद है, समझे। अपना नाम, अपनी शोहरत, अपना हलका बढ़ाना ये मकसूद नहीं, ये तो दुनिया है, समझे। जैसे अभी हम पढ़ेंगे, समझे। तो ये है तसव्वुफ का मकसद, समझे, कि भाई अपने हर काम में सोचे, हर काम में सोचे कि मैं ये कर रहा हूँ ये अल्लाह के लिए कर रहा हूँ, अपने नफ्स के लिए, अपनी इज्जत के लिए, तो फिर इसमें बरकत होती है। इन्नमल आमालु बिन्नियत, जो है ना, कि आमाल का मदार नियत पर है, तो सवाब के एतबार से तो है ही, आखिरत में, आखिरत में सवाब नियत पर होगा। दुनिया में भी इसके बरकात का जहूर जो होता है वो नियत पर होता है, दुनिया में भी। चुनांचे दारुल उलूम देवबंद शुरू हुआ था अनार के दरख्त के नीचे, वो दरख्त हमने देखा था छत्ता मस्जिद के सामने, बिल्कुल जहाँ हजरत शेख राम, हजरत मुफ्ती साहब का क़याम जहाँ था छत्ता मस्जिद में, समझे, उसके सामने अनार का दरख्त था, दाड़म, समझे, उसके नीचे मदरसा शुरू हुआ था, समझे। कोई इमारत नहीं, कुछ नहीं, लेकिन उन बुजुर्गों का इखलास देखिए, समझे। 5,000 तलबा रहते हैं इस वक्त। तो हजरत क़ारी तैयब साहब रहमतुल्लाह ने एक मरतबा बयान में कहा था कि भाई नियत पर आमाल का सवाब तो है ही, दुनिया में बरकात का जहूर भी नियत पर होता है, समझे। फिर ये मिसाल दी थी इस किस्म की, और भी एक दो वाक़ियात बयान किए थे। तो बहरहाल जो है तसव्वुफ़ का मकसद भी यही है। तो ये तो बीच में बात आ गई इस पर कि भाई हमने मजलिस क्यों बन रखी, कि भाई काम करना है लेकिन हिकमत के साथ करना है, समझे। अल्लाह ताला हमें सही समझ नसीब फरमाए। अब ये जो है शरीयत व तरीक़त का तलाज़ुम, इसमें से तालीम चल रही है तो कुछ सुना दें। ये हजरत शेख रहमतुल्लाह अलैह की किताब है, इसमें जो है शेखुल इस्लाम मौलाना हुसैन अहमद मदनी अलैहि रहमा जो हैं, इनके मकतूबात चल रहे थे। तो माशाअल्लाह एक मकतूब पढ़ के सुनाया भी था, फिर भी सुना देते हैं। हज़रत शेखुल इस्लाम मौलाना हुसैन अहमद मदनी अली रहमा फरमाते हैं, मोहतरमा यानी अपने किसी मुरीद को दुनियावी मसाइब भी उसकी रहमतें हैं जिनके ज़रिए से बंदे को अपनी तरफ खींचा जाता है। अल्लाह की तरफ से जो मुख्तलिफ मुसीबतें आजमाइशें आती हैं ये भी रहमत है, अपनी तरफ खींचा जाता है, वरना बंदाए फिरौन बेसामान बनकर अन रब्बुकुमुल आरा का नारा लगाने लगता है। बिल्कुल मुसीबत न होती तो फिरौन बन जाता है। वलौ बसतल्लाहु रिज़्क़ लिइबादिही लबगौ फिल अर्द, अगर अल्लाह ताला अपने सब बंदों के लिए रोज़ी फराख कर देता तो वो दुनिया में शरारत करने लगते। सबकी रोज़ी सेम हो जाती तो फिर फसाद फैल जाता। कहते उसकी दलील है, नीज़ इब्तिला और इम्तिहान, आजमाइश और परख दोनों तरह जारी है, इनाम और वसअत दुनियावी से भी और तंग दस्ती और मसाइब से भी। अल्लाह की तरफ से आजमाइश दोनों तरह होती है, कभी जो है रोज़ी फराख होती है, ज़्यादा होती है, वसअत होती है, इनाम होता है, और कभी जो है हालात आते हैं, तंगी होती है। फिर कुरान शरीफ की आयत लिखी है, वनबलूकुम बिश्शर वल खैर फितना, हम तुमको बुरी भली हालतों से अच्छी तरह आजमाते हैं। अल्लाह ताला कहते हैं, कुल नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स को मौत का मज़ा तो चखना है, लेकिन इससे पहले वनबलूकुम बिश्शर वल खैर फितना, दोनों तरह आजमाते हैं। दूसरी जगह फरमाया गया, वबलौनाहुम बिलहसनात वस्सैयात, और हम उनको खुशहालियों और बदहालियों से आजमाते हैं। गरज ये आलम इम्तिहान की जगह है और तरह तरह से इम्तिहान का सिलसिला जारी रहता है, इसमें पास होने की फिक्र होनी चाहिए। ये तो अल्लाह की तरफ से इम्तिहान तो आते ही रहेंगे, हम इसमें पास हो जाएं इसकी फिक्र होनी चाहिए। और बजुज मालिक के हकीकी, बजुज मालिक के हकीकी दाइम और बाकी किसी चीज़ और किसी शख्स से दिल लगाना नहीं चाहिए। जो काम कीजिए हुस्न नीयत के ज़रिए से इबादत बना लीजिए। इन्नमल आमालु बिन्नियात, हत्ता के सोना, खाना पीना और हाजात बशरिया का बजा लाना सब इबादत हो सकता है। ज़रिया और वसीला इबादत यकीनन इबादत, हम अच्छी नीयत से खाएंगे तो वो खाना भी हमारा इबादत हो जाएगा कि भाई इससे कुव्वत हासिल होगी, हम इबादत करेंगे, दीन के काम करेंगे। जैसे रमज़ान में है, रमज़ान में सहरी क्यों खाते हैं? एक तो सुन्नत की नीयत होती है और दूसरी ये नीयत होती है कि इससे जो कुव्वत हासिल होगी रोज़े पर, तो अब ये खाना हमारा सवाब बन गया। ज़रिया और वसीला इबादत यकीनन इबादत है। ज़िक्र और फ़िक्र से मकसद असली रज़ाए महबूब हकीकी है। ये ज़िक्र फ़िक्र हम क्यों करते हैं भाई? तो कभी अल्लाह की रज़ा मकसूद है, किसी लज्जत का हासिल होना, कल्ब का साफ होना, कशफ व करामात का मिल जाना, अनवार व बरकात का महसूस होना, फ़ना और बका, कुतबियत और गौसियत सब के सब गैर मकसूद हैं, इनकी तरफ तवज्जो और कसद ख़तरनाक चीज़ है। तो ये ज़िक्र तिलावत इन सब से मकसद सवाब हो, अल्लाह की रज़ा हो, ये अभी जो गिनवाई वो चीज़ ना हो कि लोग हमें बुज़ुर्ग समझे, हम कुतुब बन जाएं, गौस बन जाएं, अब्दाल बन जाएं, ये मकसद नहीं होना चाहिए। अल्लाह अगर किसी को गौस कुतुब बना दे, अब्दाल बना दे, तो और बात है, वो तो समझ नहीं मत, वो तो अल्लाह की तरफ से इनाम है। कुरान शरीफ में पहले भी मैंने आयत सुनाई थी, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, अला इन औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून लहुमुल बुशरा फिल हयातिद दुनिया व फिल आखिरा। तो अल्लाह के नेक बंदे होते हैं उनके लिए बशारत दुनिया में भी होती है, फिर दुनिया वाला आखिरत में तो है, दुनिया में भी होती हैं बशारतें, और अल्लाह के बंदों को मुतवज्जह किया जाता है। कुरान शरीफ में दूसरी आयत में इन्नल्लज़ीन आमनु व आमिलुस सालिहात सयजअलु लहुमुर रहमानु वुद्दा, लोगों के दिल में अल्लाह पाक मोहब्बत डाल देते हैं। तो ये तो पेशगी एक बशारत है, वो मिलती हैं किसी को, मकसूद नहीं होती, मकसूद अल्लाह की ज़ात है। इसीलिए तसव्वुफ़ में आता है ये जो कैफियत हैं, लज्जत को हासिल होना है, यानी नमाज़ों में जी लगना, दुआओं में, जिसको कैफियत कहते हैं, तो कहा ये महमूद हैं, मकसूद नहीं है। सुभान अल्लाह, देखिए ये अल्फाज याद रखने के, ये महमूद तो हैं, महमूद का माना अच्छा है कि इससे ज़रा इबादत में दिल लगता है, लेकिन मकसूद नहीं। अगर हासिल हो जाता है तो ठीक है, कुरान शरीफ की आयत से हैं साबित, इन्नमल मुमिनून अल्लज़ीन इज़ा ज़ुकिरा अल्लाह वजिलत क़ुलूबुहुम व इज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु ज़ादतहुम ईमाना व अला रब्बिहिम तवक्कलू। तो कैफियत का हासिल होना ये महमूद तो है, अच्छा है, लेकिन मकसूद नहीं कि हम इसके लिए इबादत ना करें, जी लगे या ना लगे हमें तो करना है। मसलन ये ज़ोहर की चार रकात फ़र्ज पढ़नी थी, ये तो फ़र्ज़ है, अल्लाह का हुक्म है, अब चाहे हमारा जी लगे या ना लगे, इसमें कैफियत हासिल हो या ना हो, हमें तो करना है। अगर कैफियत भी आ गई तो नूरुन अला नूर, तो नूर नारा नूर है, समझे। फिराक वसल चीखाही रज़ाए दोस्त तलब के हैफ बाशद अजो गैर अजी तमन्ना है। फिराक वसल को क्या ढूंढता है, महबूब की रजामंदी ढूंढ के महबूब से महबूब के सिवा की तमन्ना बड़े अफसोस की बात है। मस्कूरा बाला चीज़ें वसाइल और ज़राए हैं, मकसद असली सिर्फ़ रज़ाए इलाही हैं, बंदे का फरीज़ाए आदाब और उबूदियत बजा लाना है। बंदा का तो काम क्या कि बंदे को जो काम सौंपा वो करें, अल्लाह ताला खालिक है, मालिक है, हम उसके बंदे हैं, अल्लाह ने हमारे ऊपर इबादत फ़र्ज की है, अब हम इबादत करेंगे मालिक की रज़ा के लिए, वो बस यही मकसद होना चाहिए, समझे। और उस पर अगर सवाब हैं तो ये इखलास के खिलाफ नहीं है, समझे। ये इसलिए कि सवाब और जन्नत जो है ये रज़ाए इलाही का मज़हर है। हमारे उस्ताद फरमाया करते थे, अल्लाह अकबर, हमारे असातिज़ा थे ना, अहलुल्लाह थे, यानी साहिब निस्बत, वो कहते थे कि आमाल से अगर जन्नत जो है इसकी हमने तमन्ना की, जन्नत के हसूल की, सवाब की, तो ये इखलास के खिलाफ नहीं। फिर दलील में पेश करते थे कि जन्नत जो है ये अल्लाह की रजामंदी के, अल्लाह की रजामंदी के का ये इजहार का मजहर है, यानी अल्लाह की रज़ा का ज़ुहूर कहाँ होगा, जन्नत में होगा। इसीलिए जहाँ जन्नत की नेमतों का जिक्र किया है तो उसके बाद हैं वरिदवानुम मिनल्लाह अकबर, एक आयत में है जहाँ जन्नत की नेमतों का जिक्र किया है तो वहाँ आगे हैं वरिदवानुम मिनल्लाह अकबर, और अल्लाह की रजामंदी बड़ी चीज़ है। तो ये इखलास के ख़िलाफ़ नहीं है, इसलिए कि अल्लाह जिससे राज़ी होंगे तो उसको जन्नत अदा कर, और अल्लाह का दीदार भी जो नसीब होगा तो जन्नत में होगा, जहन्नम में थोड़ा। जहन्नम तो मज़हर गज़ब है, जहन्नम क्या है, मज़हर गज़ब। अल्लाह जिससे नाराज़ होंगे तो उसका ठिकाना जान अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए। दूसरे एक मकतूब में फरमाते हैं, ये उम्र अजीज और उसके लम्हात बेश कीमत जवाहिर हैं, हम इतनी गफलतों में इनको ज़ाये कर रहे हैं जिनका खमियाजा बजुस कफे अफसोस मलने के और क्या हो सकता है। और क्या होगा जबकि कहा जाएगा अवलम नुअम्मिर को माए तज़क्कर फ़ीहि मन तज़क्कर वजाकुम नज़ीर फ़ज़ूक़ू फ़मा लिज़्ज़ालिमीन मिन नसीर। क्या हमने तुमको इतनी उम्र नहीं दी थी कि जिसको समझ ना होता वो समझ सकता। क़यामत में कहा जाएगा अवलम नुअम्मिर को माए तज़क्कर, क्या हमने इतनी उम्र नहीं दी थी जिसको समझना होता वो समझ सकता, और तुम्हारे पास डराने वाला भी पहुंचा था, यानी नबी की दावत पहुंच चुकी थी, यानी पैगंबर सो मज़ा चखो कैसे जालिमों का कोई मददगार नहीं। मेरे मोहतरम दोस्तों, अहबाब की वजह से इन लम्हात अजीज़ा को ज़ाये करना किस कदर बेवकूफ़ी है, और गौर करके उसको समझना चाहिए। तो बहरहाल अल्लाह पाक ने ये वक्त दिया है, हमें उम्र दी है, उसमें हम अभी वक्त हैं तौबा करें, सच्ची अल्लाह की तरफ मुतवज्जे हों, और जितने हो सके हम नेक आमाल करें। मैं इसीलिए तो कहा करता हूँ बार बार कि भाई ज़्यादा नहीं कर सकते तो 5 वक्त की नमाज पढ़े, हम इखलास के साथ तस्बीह फातिमा पढ़ें, नहीं बात फजर के बाद यासीन शरीफ पढ़ लिया करें, सोने से पहले सूरह तबारक अल्लज़ी पढ़ लिया करें, जुमा के दिन सूरह कहफ पढ़ें, नहीं बात और अल्लाह तौफीक दें तो और तस्बीहात पढ़ें, कुरान शरीफ की तिलावत का मामूल बनाएं रोज़ाना। मैं तो कहता हूँ बहुत ही कम, इस पर एक पारा भी नहीं पढ़ सकते तो क्वार्टर पढ़ो। अगर कोई हाफिज़ है ज़ुबानी पढ़ सकता है तो पढ़े, वो अपनी तरतीब से पढ़े, समझे, अपनी तरतीब से पढ़ें। क्या मतलब तरतीब से, यानी हुमुल मुफ्लिहून पर हमारा कुरान शरीफ ख़त्म हुआ, मसलन हम एक तरतीब से पढ़ रहे हैं और कुरान शरीफ हमारा ख़त्म हुआ तो फिर वहाँ से फिर तरतीब शुरू कर दें। सुनिए मत अर्राहिल वल मुर्तहिल आता है, तो इस तरीके से ज़्यादा नहीं तो क्वार्टर क्वार्टर पढ़े, लेकिन तरतीब न छोड़े अपनी। तो साल में एक तो कुरान शरीफ ख़त्म होगा, तो बहरहाल कुछ न कुछ कुरान शरीफ की तिलावत तरतीब से पढ़ा करें। अगर नमाज में पढ़ सकते हो तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर हमारा हिफ्ज़ इतना पक्का नहीं है, नमाज में नहीं पढ़ सकते, तो देख करके पढ़ें, नहीं मान तरतीब बाकी रखें कुरान शरीफ की। ये नहीं कि रमज़ान के बाद हम ख़त्म कर दें मफले उन पर, उसके बाद जो तरतीब है हमारी चालू रखें पूरे साल, थोड़ा 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 थोड़ा, हमने एक एक हरफ पर 10 नेकी मिलती हैं, ये सोच कर पढ़ें कि अल्लाह का कलाम है, एक एक हरफ पर मुझे 10 नेकी मिलेगी, ये सोच कर पढ़ें। इसी को एहतिसाब कहते हैं, कहते हैं मन काम रमजान ईमान व एहतिसाब, तो ईमान और एहतिसाब के साथ हर अमल करता रहें। तो इससे होगा क्या, यानी ये 5 वक्त की नमाजें हैं, तस्बीह फ़ातिमा है, रोज़ाना यासीन शरीफ है, सूरह तबारक अल्लज़ी है, सूरह कहफ है, जुमा के दिन दरूद शरीफ का अहतमाम है, ये आमल थोड़े थोड़े करेंगे तो फ़ायदा क्या होगा, वो तो है आखिरत में तो सवाब बहुत बड़ा इंशाअल्लाह। इसकी वजह से कल्ब में रोशनी रहेगी भाई दोस्तों, रोशनी रहेगी। फितने का ज़माना है, समझेंगे फितने, इसकी वजह से कल्ब में रोशनी रहेगी और हमारा ईमान महफूज रहेगा, वरना फितने का ज़माना। हदीस में आता है फितने कैसे आएंगे, ककतइल लैलिल मुज़लिम, अंधेरी रात के टुकड़े जैसे होते हैं। कि अंधेरी रात हो विंटर की तो शुरू में अंधेरा होता है, फिर बढ़ता है, फिर बढ़ता है, फिर बढ़ता है। इस तरीके से फितने यानी हमें हक और बातिल नज़र नहीं आएगा। ये ककतइल लैलिल मुज़लिम, अंधेरी रात के टुकड़े की तरह फितने आएंगे। उस वक्त युस्बहु मुमिनन व युमसी काफिरन, सुबह में मोमिन होगा शाम में काफिर होगा, शाम में मोमिन सुबह में काफिर, हक व बातिल में इम्तियाज मुश्किल हो जाएगा। समझाइए, और अल्लाह के वास्ते हम इंटरनेट पर सारे प्रोग्राम न देखा करें। समझाइए, इसलिए कि न्यूज़ के नाम से भी फितने फैल रहा है, न्यूज़ के नाम। अब मसलन इंडिया में जो है कोई काम हुआ, हुकूमत ने कोई काम किया, अब वो न्यूज़ में दे रहे हैं, सब देख रहे हैं, वो तो फितना है। हक को यानी बातिल को हक समझने लगता है फिर आदमी आहिस्ता आहिस्ता, तो न्यूज़ के नाम से भी फितने फैल रहे हैं बहुत ज़्यादा। यानी एक बातिल है जो शुरू हो रहा है, सुनिए बात, अब उसको न्यूज़ पर दे रहे हैं, सब देख रहे हैं। समझाई बात, अब ये नहीं समझ रहे हैं कि आहिस्ता आहिस्ता इस बातिल का असर कल्ब पर होगा। समझाई बात, कुरान ने जिसको बातिल कहा है, समझाई बात, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी ज़िंदगी इस बातिल को मिटाने के पीछे खर्च हुई। समझाई बात, उसको हक बना करके दिखा रहा है, समझाई, ये फितना है। समझाई, मैं इशारा कर रहा हूँ कि इस तरीके से फितने फैल रहे हैं कि जिसको समझना मुश्किल होता है। सुनिए, न्यूज़ के नाम से, सुनिए, बहुत सी मिसालें हैं। जो अकायद हमारे कुरान से साबित हैं, हदीस मुतवातिर से साबित हैं जी, उसका इनकार किया जा रहा है और फिर उसको यूट्यूब या जो भी कहो आप लोग उस पर दिया जा रहा है। अब ये क्या, ये फितना। अब हम उसको समझने के लिए पढ़ते हैं कि जो हम भी जरा देखें क्या है, समझे ना। मसलन नुज़ूल ईसा का मसला, एक एग्जांपल देता हूँ। कुरान और हदीस से उलमा ने इसको साबित किया है, समझे ना। अब जो है उसका इनकार किया जा रहा है। अब एक वक्त आएगा, अल्लाह हमारी हिफाजत फरमा, कयामत का भी इनकार करेंगे। जब कयामत की बड़ी निशानियां जो कुरान से साबित हैं उसका इनकार किया जा रहा, तो फिर एक वक्त तो वो भी आएगा। वो तो सुनिए मान कि कुरान की आयतों का भी नऊज़ु बिल्लाह इनकार करने, कयामत से मुतल्लिक हैं वो, तो क्या करेंगे। इसलिए न्यूज़ के नाम से भी जो इंटरनेट पर आजकल खबरें फैल रही हैं उसकी तरफ तवज्जो न करें। समझे, अपने काम से काम रखें, अपने काम से काम। और दूसरी बात यह कि आमाल की पाबंदी करें, आमाल की पाबंदी, तो इनसे कल्ब में रोशनी रहेगी इंशाअल्लाह, और इन फितनों से हिफाजत होगी। दुआओं का भी अहतमाम होना चाहिए हमेशा। अल्लाहुम्मा इन्ना नऊज़ु बिका मिनल फितन मा ज़हर मिन्हा व मा बतन। اللهم إنا نعوذ بك من فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. دعاءك خاصة، اللهم ثبتنا على الإيمان وأمتنا على الإيمان وأدخلنا الجنة بغير حساب مع المتقين مع الأبرار. يا عزيز يا لطيف يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين. سبحان الله. طبيعت ہماری ٹھیک نہیں تھی لیکن آپ حضرات کی برکت سے کچھ باتیں کہہ دی. آئندہ مجلس انشاءاللہ دو ہفتے کے بعد مسجد محمودیہ میں ہوگی. مسجد محمودیہ.